पत्र संसार। दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपनी दीदी मरियम मेहर दादी
और भैया अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
आज भी आपके ईमेल, आपके कमेंट्स और आपके विचार कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। देखना यह है कि दीदी की शुरुआत कहां से होती है।
जी, हमेशा से आनंद मोहन भाई ने हमें ईमेल दिया है, तो उन्हीं के ईमेल से शुरू कर रहे हैं। भिलाई दुर्ग से लिखते हैं, आशा रखता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। मैंने आर्काइव में 3 दिसंबर के कार्यक्रम सुने, लेकिन ठीक से सुनाई नहीं दिए। रेडियो में कार्यक्रम सुनाई नहीं देते हैं। पत्र संसार को वेबसाइट पर अपडेट किया जा रहा है, इसके लिए आपको बधाई देते हैं। हर देश के समाचारों में देश की समाचार जो रहती है वो आजकल सबसे पहले हर देश के कोरोना पर जानकारी देते हैं, लेकिन रेडियो तेहरान इस पर खामोश रहते हैं। मैं दुनिया के काफ़ी रेडियो स्टेशन सुनता हूँ। आपको समाचारों में स्थानीय विषय पर भी समाचार देना चाहिए। आपके देश के महत्वपूर्ण समाचार अन्य देश की रेडियो स्टेशन से सुनना पड़ता है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
जी, ये महत्वपूर्ण बात है। अलबत्ता ईरान की खबरें, ईरान के समाचार बुलेटिन में भी और वेबसाइट पर भी नियमित रूप से दिए जाते हैं। कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना के संदर्भ में यह है कि ईरान में वैक्सीनेशन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है और इसको बहुत ही आसान इस प्रक्रिया को बनाया गया है। इस तरह से आसान बनाया गया है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन पूरी तरह निःशुल्क है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस समय स्थिति यह है कि अगर कोई भी वैक्सीन के लिए जा रहा है तो उसे लाइन नज़र नहीं आती, शायद वो पहला आदमी होता है लगवाने वाला। चूँकि मेरे साथ खुद भी ये हुआ, मैं वैक्सीन के लिए गया तो मैं जब पहुंचा तो मुझसे पहले जो एक बंदा था उसको वैक्सीन लग चुका था और वो जा रहा था, इसके बाद मैं था। तो इस तरह की स्थिति है। इसका असर फिर ये भी हुआ है कि कोरोना की स्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ गई है ईरान में। ये खुशी की बात है और दुआ करनी चाहिए कि ये स्थिति और भी बेहतर हो जाए, कि मौतों और संक्रमण दोनों के आंकड़े बहुत ही नीचे आए हैं, बहुत कम हो गए हैं और ईरान का कोई भी इलाका इस समय जो रंगों के हिसाब से संक्रमण की शिद्दत को आंका जाता है उस हिसाब से सारे इलाके बहुत अच्छी स्थिति में हैं।
जी, तो भैया अब बारी है ईरानी संस्कृति से जुड़ी खबर की। और मैं आपको बता दूं कि आप अभी कोरोना थोड़ा बहुत कम होने की वजह से अलग अलग देशों से हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, तो ये स्विस संसद के अध्यक्ष इन्होंने इस्वान तथा यस्त का दौरा किया है।
जी,
स्विस नेशनल असेंबली के स्पीकर एंड्रियास एवी, इन्होंने ईरानी शहरों के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करने के लिए इस्फान और यस की यात्रा की है। स्विस नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने इस्फान और दक्षिणी ईरान के अर्मेनियाई धार्मिक नेता बिशप काशिचियान से मुलाकात की। एवी ने इस्फान के 2 ऐतिहासिक स्थलों वैंक चर्च के विभिन्न हिस्सों और फिर खाजू ब्रिज का दौरा किया। उन्होंने इस्फान के अन्य ऐतिहासिक स्मारकों जैसे इमाम स्क्वायर और मस्जिद शेख लुत्फुल्ला मस्जिद, अली कापू पैलेस और एक कपड़ा एनग्रेविंग कार्यशाला का भी दौरा किया। एवी ने इस्फान के गवर्नर सैयद रजा मुर्तजवी से शहर के अब्बासी होटल में मुलाकात की। स्विस नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और स्विस राजदूत ने अपने परिवारों के साथ यस्क की यात्रा की। यस्क की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने यस्क के गवर्नर से मुलाकात की और स्विट्जरलैंड और ईरान की सांस्कृतिक और आर्थिक संपत्तियों पर चर्चा की, विशेष रूप से यस के आर्थिक विकास में मदद करने के तरीकों के बारे में, जो एक विश्व प्रसिद्ध प्राचीन शहर है। एवी ने यस के अग्नि मंदिर और यस ग्रैंड मस्जिद जैसे शहर के ऐतिहासिक हिस्सों का भी दौरा किया। साथ ही उन्होंने वैश्विक हस्तशिल्प दरी के प्रोजेक्ट का भी दौरा किया जो मेबोत शहर में स्थित है, और वे आगे अर्दकान भी जा रहे हैं।
जी, उम्मीद है कि बड़ा कामयाब और आनंददायक दौरा रहा होगा। ईरान के दौरे इसी तरह के रहते हैं कि दौरे के बाद सैलानी या व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट रहता है। और अब बारी है कमेंट्स की, तो देखते हैं कि कमेंट्स में दीदी क्या लेकर आई हैं।
जी, सीरिया और इराक में अमरीकी हवाई हमलों में मरने वालों की सही संख्या बहुत अधिक है। न्यूयॉर्क टाइम्स, इस पर मोहम्मद अली लिखते हैं, ये अमरीका हेल, आतंकवादी, अपराधी और गैंगस्टर सब कुछ नष्ट करने और लोगों की हत्या करने में लगे हुए हैं। मध्य पूर्व में विनाश, कब्जे और तेल की चोरी के अलावा वे और कुछ नहीं कर रहे हैं। वे हवा से हमला करते हैं और निर्दोष नागरिकों को मारते हैं, फिर झूठ बोलते हैं कि आतंकवादी आसपास के क्षेत्र में थे। कितनी शादी की पार्टी में उन्होंने हवा से हमला किया और शादियों का जश्न मनाने वालों को मार डाला। उन्होंने घरों और अस्पतालों पर भी बमबारी की और बेगुनाहों को मार डाला। ये सभी राक्षसों की शैतानी एजेंसियां हैं। ये सब झूठ है क्योंकि ये अब प्रकाश में आ रहा है।
जी, मोहम्मद अली साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। और इस तरह के हमले अमेरिका की ओर से बार बार होते रहे हैं। अमेरिका जहाँ भी रहा है वहाँ ये हमले हुए हैं। सिर्फ सीरिया की बात नहीं है बल्कि अफ़गानिस्तान का एक मामला और एक घटना तो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रही, वो ये है कि अमेरिकन्स ने ड्रोन से मिज़ाइल हमला करके एक परिवार के 10 लोगों को कत्ल कर दिया, जिनमें 7 बच्चे भी थे, और इन 7 बच्चों में 1-2 साल की बच्ची भी थी। बहुत मासूम बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे, और ये मारे गए इस हमले में। और उससे ज़्यादा जिस समय हमला हुआ उस समय अमेरिका ने ये कहा कि ये दाइश के लोग थे और कोई धमाका करना चाहते थे, और उसको नाकाम बनाया गया, हमला करके ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जब सारी हकीकत सामने आ गई तो अमेरिका को मानना पड़ा, और अमेरिका ने ये माना कि हाँ, ये आतंकवादी को नहीं बल्कि एक परिवार को अमेरिका ने मारा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा पेंटागन ने कि इसके लिए हम अपने किसी सैनिक को सज़ा नहीं दे सकते।
ओमिक्रॉन ब्रिटेन में मचा सकता है तबाही, भारत के लिए भी बड़ी चुनौती। इस पर राजा आबेदी लिखते हैं, यूरोप अब दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल है। यूरोपीय लोग आने वाले कई वर्षों तक अपने गृह जेल में बंद रहेंगे। पापियों की छुट्टियां अब उनकी चॉइस नहीं है। ओमिक्रॉन अब यूरोप को नियंत्रित कर रहा है। जो देश पापों को बढ़ावा देते हैं और पापियों के पैसे पर निर्भर हैं, उनके पापी ग्राहक अब नहीं आ सकेंगे। ओपन एंडेड जेल की अवधि अब अपरियार है। भ्रष्ट अर्थव्यवस्था उनकी उम्मीदों से पहले ही जल्द ही नष्ट हो जाएगी।
बहुत ही दुखद बात है कि यूरोप में ये वायरस तेज़ गति से बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया, इसकी सबसे बड़ी चिंताजनक बात यही है कि इसका संक्रमण बहुत ही तेज़ रफ्तार से होता है और हो रहा है। यूरोप के देशों में ये देखने में आ रहा है कि एक एक दिन में, जैसे फ्रांस जैसे देश में एक एक दिन में 50,000 मामले सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन में 1,00,000 के करीब मामले सामने आ रहे थे। इस तरह की स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञों में गहरी चिंता पाई जाती है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस स्थिति पर काबू पाया जाएगा, चूंकि एक मानवीय मामला है सारी दुनिया के लिए। और अब बारी है अपने किसी श्रोता के विचार सुनने की। तो दीदी आपने क्या
ये
चुना है?
इस बहुत ही अच्छे श्रोता है हमारे डॉक्टर हेमंत कुमार, तो आइए इनके विचार सुनते हैं।
रेडियो तेहरान हिंदी सर्विस को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भारत में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जानकारी देने का सफल प्रयास किया। मैं रेडियो तेहरान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आने वाले भविष्य में भी आशा करता हूँ कि आप सूचनाओं का लिंक नियमित रूप से भेजते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आपका रेडियो श्रोता मित्र डॉक्टर हेमंत कुमार।
तो डॉक्टर हेमंत कुमार के बाद अब हमारे पास थोड़ा सा समय बचा है
जी।
तो भैया मैं एक कमेंट इसमें शामिल कर रहे हूँ।
जी।
वियना वार्ता में अच्छी प्रगति हुई है ईरान, इस पर आर्यन बरजान लिखते हैं, सब लोग जानते हैं लेकिन उन्हें परवाह नहीं है कि ईरान परमाणु बना रहा है या नहीं। वे ईरान को यूरेनियम को समृद्ध करते हुए देखने से नफरत करते हैं। अमेरिका को ये देखकर जलन हो रही है कि ईरान उन्नत तकनीकों में अपने आप प्रगति कर रहा है।
ये बात सही है कि ईरान की वैज्ञानिक प्रगति अमेरिका को अखर रही है और अमेरिका इसी तरह दूसरे पश्चिमी देश जो अमेरिका के घटक हैं और दूसरी शक्तियां जो अमेरिका के करीबी मानी जाती हैं, उन्होंने बार बार यही कोशिश की है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान वैज्ञानिक प्रगति ना कर सके। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इसराइल ने ईरान के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकों की नृशंस रूप से हत्याएँ करवाईं और हत्याएँ की इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, ये आतंकी कृत्य अंजाम दिया ताकि ईरान की परमाणु गतिविधियां और ईरान का परमाणु कार्यक्रम तेज़ गति से आगे न बढ़ सके। अब ये अलग बात है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम इन तमाम इसराइल और अमेरिका की काली करतूतों के बावजूद तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, पूरी तरह विकसित हो चुका है। नागरिक लक्ष्यों की अगर बात की जाए तो सभी क्षेत्रों में ईरान परमाणु तकनीक को डेवलप करने में कामयाब रहा है। ये ईरान के लिए एक बड़ी कामयाबी है और बधाई का पात्र है, इसलिए कि बड़ी ताकतों और अन्य शक्तियों की ओर से ईरान के रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई। तो दीदी मेरे ख्याल से इसी के साथ चूँकि समय भी अब समाप्त हो गया है
जी।
तो हम श्रोताओं से अनुमति ले लेते हैं। तो अगली मुलाकात तक श्रोताओं भैया अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहरदादी को अनुमति दीजिए।
खुदा हाफिज़।